आप सभी जानते ही होंगे, कई लोग हर सोम मंगल के दिन जाते ही हैं पालनपुर डॉक्टर जितेंद्र भाई के पास। तो आज जितेंद्र भाई हमारे साथ बीच में हैं और एक खास प्रकार की जो बीमारी जिसको इन्फेक्शियस डिसीज कह सकते हैं और हम संगठन में रहते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो उस बीमारी का नाम है टीनिया और उसके बारे में हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सके, अपने आप को कैसे बचा सके, औरों को इन्फेक्शन न लगे इसीलिए कैसे रहे, क्योंकि संगठन में रहते हैं। तो जितेंद्र भाई अभी आपको इनके बारे में बताएंगे। और जितेंद्र भाई 1984 से हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, साथ में उनका इतना सौभाग्य है कि सभी दादियों, सभी बड़े भाई बहनों की और निवासियों की सेवा करने का उनको बहुत बड़ा चांस मिला है। और अभी तो सेंटर में भी जाते हैं महादेव नगर, तो बीके भी बन गए हैं और वो भी अपना डिसीज के बारे में बताएंगे।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका बेन, आपने बहुत अच्छे शब्दों में हमारी पहचान दी। मैं डॉक्टर जितेंद्र शाह चर्मरोग विशेषज्ञ हूं और 1984 से मैं प्रैक्टिस करता हूं, स्किन स्पेशलिस्ट चर्मरोग विशेषज्ञ। तो पिछले 33 साल से पालनपुर में प्रैक्टिस करता हूं और 12 साल से अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूं। तो जैसे कि चंद्रिका बहन ने बताया, बाबा की कृपा से हमको बहुत सारे भाई बहनों की सेवा का लाभ मिला है। जब ग्लोबल हॉस्पिटल शुरू हुई थी माउंट आबू में, तब भी हम मानद चर्मरोग विशेषज्ञ के रूप में वहां आते थे, तो हमको वहां भी सेवा का मौका मिला था। खास आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि कई बीमारियां ऐसी होती है कि जो मिटने में टाइम लेती है, बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती है और धीरे धीरे मिटती है। यदि हम उसको बीमारी को रोक लेवे तो हमको दवाई लेनी नहीं पड़ती है, आगे फैलती नहीं है। और जब परिवार में साथ में रहते हैं बहुत भाई बहन, तो एक से दूसरे को लगने की संभावना वाली ये बीमारी है। तो किसी को बीमारी हुई तो उसको तो दवाई लेनी ही पड़ी, दवाई से मिट गया, लेकिन उसके कारण और साथ में रहने वाले भाई या बहन को हुई, उसको भी दवाई लेनी पड़े, तो वो हमारा मन वो स्वीकार नहीं करता कि अरे क्या हो गया। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले ताकि हम हमारी शरीर की स्वच्छता का ध्यान रख सके। वैसे तो सब भाई बहन का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग शरीर का स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, राजयोगी है तो सात्विक भोजन लेते हैं, दिन में 2 बार स्नान करते हैं, शरीर स्वच्छ रहता है, स्वच्छ कपड़े भी पहनते हैं और टेंशन फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन है। उन लोगों को जो भी सेवा दी गई है वो बड़ी निष्ठा से करते हैं सेवा, तो वैसे भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन बाहरी वातावरण के प्रभाव से ये बीमारी होती है, जिसको गुजराती में दादर बोलते हैं, हिंदी में दाद बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। उसमें शरीर में इनसाइड में या शरीर पर, चेहरे पर, शरीर के कोई भी हिस्से पर गोल गोल निशान होते हैं और बहुत खुजली चलती है। और वो खुजली भी कैसी होती है कि जब मन फ्री है, हम मेडिटेशन में राजयोग में बैठे हैं या कोई पढ़ाई करते हैं, कोई काम करते हैं, तब खुजली चलती है। यदि हम चलते फिरते हैं, कोई मैन्युअल वर्क करते हैं, तो मालूम भी नहीं पड़ता कि कोई तकलीफ है। तो उससे हम मेडिटेशन में भी ध्यान नहीं लग सकता, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग सकता है। तो ये बीमारी मिटाना बहुत जरूरी है। पहले इस बीमारी में सामान्य गोलियां 1 महीना लिया, मलम कुछ लगाया, कंप्लीट मिट जाती थी, लेकिन अब उसके फंगस परंपरागत दवाइयों से प्रूफ हो गए हैं, तो वो दवाई ऐसी ही दवाई देनी पड़ती कि जिससे अभी तक उसके फंगस प्रूफ नहीं है, कंप्लीट मिट जावे, और पहले जो बीमारी एक महीने के अंदर अंदर मिट जाती थी उसको मिटाने में 1.5 से 2 महीना लगता है। दवाई भी बहुत महंगी है, करीब करीब एक व्यक्ति का कोर्स का 3 से 4 हजार रुपया खर्च होता है। अब ये फैलती है कैसे कि साथ में कपड़े धुलाए जाते हैं, किसी को शरीर पर कुछ है तो उसने खुजाला तो उसके फंगस नाखून में आए, वो खाना खाने के लिए गए, वहां एक कॉमन टॉलिया था सबका, हाथ धोए, हाथ पहुंचे, खाना खाने के लिए गए, दूसरे कोई भाई आए उसने भी हाथ धोया, वही टॉलिया से हाथ पहुंचे तो फंगस टॉलिया में से उसके हाथ में आ गई, किसी भी कारण से सामान्य खुरली चली तो फंगस शरीर पर लग गए और आगे आगे फैलते गए। तो कोई भी व्यक्ति को ये तकलीफ है तो तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट डॉक्टर का संपर्क करें और उसका पूरा कोर्स करें। उसमें एक विशेष बात ये बनती है कि हम जो भी व्यक्ति को तकलीफ है, ये बीमारी है दादर की, तो दवाई देते हैं और बोलते हैं कि उसका पूरा कोर्स करना, जब हम कहे तभी दवाई बंद करना। लेकिन क्या होता है कि खुजली मिट गई, थोड़े स्किन में नॉर्मल स्किन दिखने लगी, 1-2 सप्ताह में 80-90% आराम हो जाता है, तो फिर व्यक्ति समझता है कि चलो चलो हमको तो मिट गया, दवाई बंद कर देते हैं, फिर वापस वो बीमारी होती है, आगे फैलती है, वापस आते हैं। तो जो दवाई पहले लिया वो दवाई से उसके जीवाणु थोड़े प्रूफ हो गए तो वो दवाई काम ही नहीं करती है, फिर उससे आगे की ज्यादा पावर वाली दवाई देनी पड़ती है। तो दवाई लंबे समय तक लेनी पड़ती है, खर्च भी बहुत होता है और तकलीफ भी ज्यादा होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब डॉक्टर बोले कि अब आप दवाई कंप्लीट लिया है, 100% मिट गया है, 100% आराम है, अब ही आप दवाई बंद करो, तब तक हमको दवाई लेने की है। दूसरा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैले नहीं, इसके लिए जिसको भी ये तकलीफ है उसके सब सूती कपड़े, टॉलिया, अंडरवेयर उबलते हुए गर्म पानी से धुलवाना चाहिए, और सिंथेटिक कपड़े पॉलिएस्टर, टेरिकॉटन के, टेरिन के, तो ठंडे पानी से धुलवा के इस्त्री करवा देनी चाहिए ताकि ये कपड़े संपूर्ण जीवाणु मुक्त हो जाए। किसी के टॉलिए का उपयोग नहीं करना, हमारा टॉलिया किसी को नहीं देना। हम कहीं बाहर गए हैं, कोई कार्यक्रम के लिए गए हैं, तो वापस आके सबसे पहला काम ये करने का कि हमारे सब कपड़े उबलते हुए गर्म पानी से धुलाए जाए, क्योंकि हम बाहर गए हैं, कहीं ट्रेन में मुसाफरी की, बस में, गाड़ी में मुसाफरी की है, हमारे पास में कोई बैठे है, उससे भी हमको ये बीमारी लग सकती है। एक बार उसको संपूर्ण मिटाने के बाद वापस होने से रोकने के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि कभी भी अंडरवेयर गीले नहीं पहनना, खास करके बारिश के मौसम में ये बीमारी ज्यादा फैलती है गर्मी और पसीने से और गीला कपड़ा पहनने से। हम कहीं बाहर गए, बारिश में कपड़े भीगे हैं, तो हम कई बार ऊपर के कपड़े बदलते हैं लेकिन अंडरवेयर नहीं बदलते हैं, तो अंडरवेयर भी तुरंत बदल लेने चाहिए। बारिश के मौसम में अंडरवेयर कंप्लीट सूखे नहीं है तो उसको इस्त्री लगाकर कंप्लीट सूखे कर देने चाहिए तब ही पहनने का। नहाने के बाद हम टॉलिया से शरीर पहुंचते हैं तो अंदर का हिस्सा पहुंचते समय तो टॉलिया गीला हो जाता है, तो हमको 2 अलग टॉलिया रखना चाहिए, अलग अलग नैपकिन रखना चाहिए। बड़े टॉलिया से पूरा शरीर सूखा किया, छोटे टॉलिया से इनसाइड की स्किन को सूखी की, और फिर हमने कपड़े पहने। कपड़े पहनने में भी जल्दी नहीं करना, जब पूरी चमड़ी सूखी होती है तब ही कपड़े पहनना है, और खास करके बारिश के मौसम में नहाने के बाद जिसको ये बार बार तकलीफ होती है इनसाइड में, शरीर के अंदर किसे में, तो पाउडर आता है एंटी फंगल पाउडर, वो पाउडर लगा देना और फिर कपड़े पहनना चाहिए ताकि ये बीमारी हमको उससे रोक सकते हैं। और उसके लिए खास प्रकार के एंटी फंगल साबुन आते हैं, वो साबुन से स्नान करने से हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। हमारे साथ जितने भी कोई भी भाई है, बहन है, उसको ये तकलीफ है तो उसको प्यार से समझाना कि आप भी दवाई ले लो ताकि आपको मिट जाए, वरना जिसको हमने दवाई दिया, पूरा कोर्स किया, उसको तो पूरा मिट गया, लेकिन साथ में रहने वाले कोई भी व्यक्ति को है तो वो बीमारी वापस लग सकती है, वापस से तकलीफ होती है, फिर से दवाई खानी पड़ती है। तो ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी एक कॉमन बीमारी, हम जहां रहते हैं यहां साल में 8 से 9 महीना हवा सूखी होती है, तो सूखी हवा से शरीर पर खुजली चलती है, उससे अलग अलग बीमारी भी हो सकती है। तो सर्दी के मौसम में साबुन का उपयोग बिल्कुल बंद कर दो या बहुत कम करो, या ग्लिसिन वाला साबुन लगाओ, कपड़े पूरे ऐसे पहनने के कि पूरा शरीर ढंका रहे, और आपको जो ठीक लगे वो नारियल तेल लगाओ, तिली का तेल लगाओ, सरसों का तेल लगाओ, ऑलिव ऑयल लगाओ, व्हाइट पेट्रोलियम जेली लगाओ, लेकिन चमड़ी को सूखी पड़ने से रोकना। ज्यादा सूखी है तो हम दिन में 3-4 बार भी लगा सकते हैं, सामान्य सूखी है तो दिन में 2 बार लगाने की। तो इस तरह चमड़ी को सूखी पड़ने से रोकना बहुत जरूरी है। और दिन प्रतिदिन पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, बारिश कम होती जा रही है, तो हवा सूखी होने का ये प्रभाव भी बढ़ता जाता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारी ये मान्यता है कि नहीं, साबुन से स्नान नहीं करेंगे तो शरीर स्वच्छ नहीं होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है। सर्दी के मौसम में तो पसीना भी नहीं होता है, हम खाली पानी से स्नान करें तो भी चले। कभी कभी साबुन लगाना हो तो ग्लिसिन वाला साबुन लगावे ताकि चमड़ी सूखी नहीं पड़े। खास करके 40-45 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर के अंदर चिकनापन वाली ग्रंथियां कम काम करती है, और महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ये चमड़ी के सूखापन का प्रमाण ज्यादा होता है। तो उन लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की चमड़ी को सूखे पड़ने से रोकने के लिए अच्छी तरह से नहाने के बाद और रात को सोते वक्त दोनों टाइम स्नान करने के बाद व्हाइट पेट्रोलियम जेली या कोई भी तेल का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब ऐसी चीज है कि हम हमारा ध्यान रखें और हमारे कारण दूसरे किसी को तकलीफ नहीं हो, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। खास हमने इसलिए ये प्रोग्राम का बात कहा था कि हम पालनपुर में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास आज जो भी पेशेंट्स आते हैं उन लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारी दवाएं लिया, लेकिन पूरा नहीं मिटा, इसलिए स्पेशलिस्ट के पास आते हैं। तो हम उसको समझाते हैं कि आप जो भी डॉक्टर ने दवाई दिया वो तो बराबर है, लेकिन पूरा कोर्स करो, बीच में से दवाई छोड़ो नहीं, और जब डॉक्टर कहे कि आप दवाई बंद करो तभी दवाई बंद करो। तो हमारे पास आज पूरे परिवार के परिवार आ रहे हैं, जितने भी हस्बैंड वाइफ है, चिल्ड्रन है, सब आते हैं, पूरे से पूरे गांव आए हैं। हम पालनपुर में है तो वहां के कानोदर है, मजादर है, छापी है, वो सब पूरे गांव में बीमारी फैली हुई है, और जिस तरह से वो फैलती जा रही है तुमको तो बहुत आश्चर्य हुआ कि अब उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सब लोग इतने ध्यान नहीं देते, दवाई नहीं लेते, पूरी दवाई नहीं करते हैं। अब ये बीमारी हॉस्टल्स में भी फैलने लगी है, हॉस्टल्स में लड़के साथ में रहते, एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के टॉलिये का उपयोग करते हैं, तो वो फैलती है। तो ये हमारे शरीर की स्वच्छता और हमारे कारण दूसरे किसी को तकलीफ नहीं हो, उसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो ये बीमारी हमारे यहाँ संस्था में बने नहीं, कोई भी केस बने नहीं, और जो है कोई तो तुरंत दवाई लेके उसको पूरा मिटावे और उसके कारण दूसरे किसी को नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम का आयोजन का कहा था। तो यदि आपके ध्यान में कोई भी है तो इमीडिएटली उसको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करने का कहो, पूरा इलाज करने का कहो, और डॉक्टर कहे उसके मुताबिक दवाई करने से आज के समय में भी वो कंप्लीट मिट जाती है, 100% क्योरेबल है, संपूर्ण मिट जाती है, लेकिन ध्यान से दवाई करनी है, वो बहुत जरूरी है। अब उसके बारे में आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपको ज्यादा कोई भी उसके बारे में जानकारी मिलने चाहिए तो आप हेल्थ सेंटर में, एवर हेल्थी हॉस्पिटल में भी संपर्क कर सकते हैं, चंद्रिकाबेन ज्ञान सरोवर डिस्पेंसरी में उसका भी संपर्क कर सकते हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल है हमारा, ट्रोमा सेंटर है, सब जगह पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उसका संपर्क करो, वो आपको गाइड करेंगे, आपको मार्गदर्शन देंगे। और हम तो वैसे हर सोमवार और मंगलवार को पालनपुर में आते ही है, आप आ सकते हो, अच्छी तरह से इलाज करेंगे, पूरा मिटा देंगे, ताकि ये बीमारी एक बार की ट्रीटमेंट से पूरी मिट जावे और वापस होने से हम उसको रोक सकते हैं। हाँ, तो पहले क्या है कि उसके फंगस पानी के माध्यम से या हवा के माध्यम से शरीर पर आते हैं और वहां जमा रहते हैं, फिर कभी किसी कारण से इचिंग स्क्रेचिंग हुआ, खुजाल दिया हमने, तो फिर वो धीरे 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 आगे आगे बढ़ते जाते हैं। वो जो फंगस है हमारी चमड़ी का ऊपर का हिस्सा जिसको केरेटिन बोलते हैं, वो अपने खुराक के रूप में खाते हैं। तो एक बार इतने हिस्से में उसने केरेटिन खा लिया, फिर खाने के सर्च में, केराटिन की सर्च में वो आगे आगे फैलती जाती है, तो सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर हाथ लगता है तो लग सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि कॉमन टॉलिया, कॉमन टॉवेल है जो किचन में वॉश बेसिन के ऊपर है, उससे ज्यादा फैलते हैं। तो ये फंगस तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर स्वच्छ रखते हैं तो बीमारी लगती नहीं है, लेकिन किसी भी कारण से इचिंग और स्क्रैचिंग हुई तो होती है। इसलिए हमने ये सूखी चमड़ी का कारण बताया कि ड्राई स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और एक बार ड्राई स्किन हुई, खुजली चली, फंगस लगा, वो फंगस जब ऊपर के चमड़ी के हिस्से को नुकसान करते हैं तो हमारी चमड़ी और सूखी पड़ती है, तो साइकिल चला जाता है, और उसको साइकिल को रोकने के लिए हमको फंगस की भी ट्रीटमेंट करने की और चमड़ी को सूखी पड़ने से भी रोकना चाहिए। और ये बहुत 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 कॉमन है, पूरी विश्व में खाली हमारा देश ही ऐसा है कि यहाँ ये प्रॉब्लम उपस्थित हुआ है। ड्रग रेजिस्टेंस यानी कि दवाई से प्रूफ हो गए फंगस, और हमको उससे इस तरह से मिटाना है ताकि ये आगे बढ़े नहीं, क्योंकि तीन चार प्रकार की दवाइयां थे, कोई नई दवाइयां खास आई नहीं है, जो लास्ट स्टेज की दवाई है उससे भी कोई कोई केस तो प्रूफ बनने लगे हैं, तो हम दो या तीन फंगस की दवाइयां कंबाइन करके ट्रीटमेंट करके मिटाते हैं, लेकिन यदि सब दवाई से फंगस प्रूफ हो गई तो हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है आगे। हाँ, एक तो खुजली चलती है और गोल सिक्का जैसा निशान बनता है, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इनसाइड में भी पहले एक रेडनेस, चमड़ी लाल होती है और खुजली चलती है, फिर वो निशान बनता है और आगे आगे फैलता जाता है, उसके सिम्टम है। वो पेशेंट तो खुद ही बोल देते कि देखो डॉक्टर ये कोई दाद हुआ, वो रिंग वॉर्म हुआ, क्योंकि इजी टू डायग्नोस है, लेकिन ये ट्रीटमेंट करना ही बहुत जरूरी है, एकदम नियमित ट्रीटमेंट। और एक दो सप्ताह की ट्रीटमेंट से पूरा नहीं मिटता है, पूरी ट्रीटमेंट करने में 1.5 से 2 महीना लगता है, इसलिए ये ट्रीटमेंट पूरी करना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके पीछे क्या है कि एक तो हमारे चमड़ी के अंदर जो चिकनापन वाली ग्रंथियां हैं, जिसको अंग्रेजी में हम सेबेसिस ग्लैंड्स बोलते हैं, वो कम काम करती है। कई लोगों की शरीर की प्रकृति ऐसी होती है कि 12 महीने चमड़ी सूखी रहती है और सर्दी के मौसम में एकदम सूखी पड़ती है, तो सर्दी के मौसम में हवा सूखी है बाहर की, इसलिए चमड़ी भी सूखी पड़ती है। हमारी चमड़ी में से पानी इवेपोरेट होता है, कई लोग पानी कम पीते हैं तो उसके कारण भी ये ड्राई स्किन होती है, तो पानी ज्यादा पीना चाहिए। और चमड़ी को सूखी पड़ने से रोकने के लिए साबुन का उपयोग बिल्कुल कम करो या बिल्कुल बंद करो, और शरीर पर जो भी आपको ठीक लगे, वो नारियल तेल, तिली का तेल, व्हाइट पेट्रोलियम जेली, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाओ और उसको सूखी पड़ने से रोको। स्नान करने के बाद तुरंत मॉइस्चराइजर या तेल लगाने से जब चमड़ी गीली होती है तब वो तेल या मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से अंदर चला जाता है चमड़ी के अंदर के हिस्से में, तो जल्दी रिजल्ट मिलता है, चमड़ी एकदम ठीक रखता है। हाँ, हल्का सा गर्म पानी से स्नान करना, आइडियली 2 टाइम स्नान करना, लेकिन ज्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए, ज्यादा गर्म पानी चमड़ी को सूखी करता है, क्योंकि वो चमड़ी के ऊपर जो कुदरती चिकनापन है उसको हटा देता है। तो हमारे शरीर के टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो 50-60 डिग्री टेम्परेचर बराबर है, इससे ज्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए। हाँ, तो बस ये एक प्रकार की चमड़ी की बीमारी की जिसमें वहां चमड़ी सूखी पड़ती है, खुजली चलती है, तो शुरुआत में हाथ जहां इजीली पहुंच जाता है, जैसे कि गले का हिस्सा है तो हम बैठे हैं, सोचते हैं, कोई काम करते पढ़ते हैं, तो हाथ वहां इजीली चला जाता है, और फिर इचिंग और स्क्रेचिंग करते तो आगे आगे बढ़ता जाता है। तो इजीली एसेसिबल साइट, हाथ जल्दी से आसानी से पहुंच सके ऐसी जगह है। इसलिए कई लोगों को ऐसी आदत भी होती है कि पढ़ाई करते तो हाथ इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, और कुछ ना कुछ इचिंग स्क्रेचिंग करता है। सबकॉन्शियसली अपने मन के बाहर, ध्यान से बाहर हाथ वहां चला जाता है और फिर ये खुजली करते हैं। तो हाथ से कभी कई कारण से खुजली आवे तो हाथ से नहीं खुजाना चाहिए। हम लोगों को समझाए थे कि आप एक सूती रुमाल रखो, ऐसा 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 करो तो उससे चमड़ी को नुकसान नहीं होगा। हाथ से या किसी चीज से खुजालने से चमड़ी को नुकसान होता है और उसमें कोई चेप लगने की संभावना रहती है, इसलिए हाथ तो कभी ऐसा करना ही नहीं, नाखून भी काट देने का, नाखून भी ज्यादा लंबा रखने का। अब आइडियली नहाने के बाद लगावे तो उसका असर अच्छा मिलता है और लंबे समय तक उसकी असर मिलती है। नहाने के बाद तेल लगाने से क्या होता है कि जो तेल लगाया उसमें तो बहुत सारा हिस्सा चला जाता है, फिर भी किसी को ऐसा है कि नहीं चिकनापन नहीं पसंद है तो नहाने से पहले लगाता है, लेकिन ज्यादा जोर से रगड़ना नहीं, हल्के से स्नान करने का, ताकि जो जरूरी है वो चिकनापन रहे, ज्यादा चिकनापन है वो निकल जावे। खाने में तो जो रूटीन खाना खाते हैं वो खाने का, लेकिन जब खुजली चलती है तो ज्यादा खटाई वाली चीज नहीं लेनी चाहिए, खास करके उमली की चटनी है, आमचूर है, अचार है, टमाटर है, टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, ये सब चीज खुजली को एग्रेवेट करते हैं, खुजली को और बढ़ाते हैं। इसलिए तब तक ताजा दही, ताजी छाछ, ताजा दही की कड़ी और नींबू वो चले। नहीं अब ये क्या कि खाली चर्मरोग विशेषज्ञ इसका इलाज करके अच्छी दवाई दे सकते हैं, तो यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलेगी आपको। जैसे कि बताया कि आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ, लेकिन एक दो दिन के अंदर नहीं जा सकते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा उससे, लेकिन फुल फ्लेड ट्रीटमेंट के लिए चर्मरोग विशेषज्ञ का संपर्क करना जरूरी है, क्योंकि ये दवाई महंगी भी है। तो ज्यादातर डॉक्टर्स दे सकते हैं, लेकिन एक दो सप्ताह दिया फिर पेशेंट को लगा कि चलो हमको आराम हो गया, दवाई बंद कर दी। डॉक्टर समझाते हैं, लेकिन हम तो उसको विशेष टाइम देके समझाते हैं कि देखो ये बीमारी पूरी मिटाओ, वरना आपके कारण घर में दूसरे को लगेगी, इतनी महंगी दवाई दूसरे को खानी पड़ेगी और ये फैलती जाएगी। तो ऐसे ज्यादा डिटेल्स में समझाते हैं तो पेशेंट मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि नहीं हमको तो पूरी ट्रीटमेंट करने की ही है। और दूसरा क्या कि बार बार होती रहती है तो फिर सोचते हैं कि ना उसको एक ही बार पूरी ट्रीटमेंट करके मिटा दो, बार बार क्यों हैरान होने का है। तो हमारे पास जो पहले से ट्रीटेड पेशेंट आते हैं, जिन लोगों ने पहले दवाई लिया है वो जल्दी समझ जाते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं उन लोगों के दिमाग में जल्दी बैठता नहीं है कि डॉक्टर भले कहे हमको तो आराम है ना, अभी फिर वापस आते हैं तो फिर दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि नहीं डॉक्टर ने पहले भी कहा था कि डेढ़ दो महीना दवाई लो, हमने पूरा कोर्स नहीं किया इसलिए वापस हुआ है। हाँ तो हाँ 9420 44244 9420 44244 और फिर भी नंबर भूल जावे कहीं गुम हो जावे तो आप डॉक्टर बनारस ही भाई है, चंद्रिका बहन है, उसको किसी को भी संपर्क करो, प्रकाश भाई है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड है, दादी के कमरे के बिल्कुल बाजू में ही ऑफिस है प्रकाश भाई की, आप उस 9420 44244 हाँ हाँ उसको साइकोसोमेटिक स्किन डिसीज बोलते हैं। तो जिस लोगों के मन में तनाव ज्यादा है वो तनाव के कारण ये बीमारी होती भी है फैलती भी है। तो मन को तो टेंशन फ्री रखना चाहिए, हम सब भगवान को मानते हैं, तो कोई भी समस्या है तो हमको उसको हल करने का प्रयत्न करने का, बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर या परमात्मा या शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा के ऊपर छोड़ देना, वो हमारा समस्या का कोई समाधान बताएंगे हमको। आप सब तो राजयोगी हो तो जब अमृत वेला में बैठते हैं तब वो अपने आप वो प्रश्न मन में आ जाएगा, बाबा के साथ बात होगी और बाबा उसका इशारा करेगा कि ये उसका हल है और समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र केसा, हाँ उसमें क्या होता है कि एक तो हम हर सोमवार और मंगलवार को पालनपुर में आते हैं, तो हम खाली दो दिन आते हैं ना, तो दूसरे पेशेंट्स के लिए तो अपॉइंटमेंट से ही देखते हैं, लेकिन सब ब्रह्मा कुमारी भाई बहन जो समर्पित है उन लोगों के लिए अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा आ जाते हैं, हम उसका इलाज करते हैं। और फिर भी कभी जरूरत पड़े, ऐसा लगे कि नहीं यहाँ ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम वाले है तो हम तैयार हो है, हम कोई भी रविवार को आ सकते हैं, टाइम नक्की किया, भाई बहनों को बोल दिया, आके देख लेंगे। हाँ अभी तो नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप खाली जितने भी भाई बहन को दिखाना है तो आप एवर हेल्दी हॉस्पिटल के जो सेंटर पर आप नाम लिखवा दो, भाई हमको कांटेक्ट करेंगे, हम टाइम निकालकर एक टाइम एक दिन सेट कर देंगे आने का। रविवार को हम प्रैक्टिकली फ्री होते हैं तो रविवार को सुबह में आ जाए, देख लेंगे, फिर पालनपुर चले जाएंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र शाह जी का, जो हमें सभी दाद के बारे में सावधानी दी। तो सभी दिल से उनका तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओम शांति।
पिंजरे से अब